फिर अगला चुनाव घराना, जिसके ऊपर अब हमारे इस सबक की थीम चलेगी, और यही है वजह जिसकी वजह से गालिबन इस सूरत को सूरत आले इमरान कहते हैं, और वो क्या है, व आल इमरान अलल आलमीन, आले इमरान को चुना। बाकी सारे नाम हमारे लिए पुराने थे, लेकिन आले इमरान का लफ्ज इतना कॉमन नहीं है हमारे लिए। सवाल पैदा होता है कि आले इमरान से मुराद कौन सी आल है? तो तारीख में दो इमरान गुजरे, नंबर एक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, ये हजरत सुलेमान की नस्ल से थे। अगर हम यहां इनका चुनाव देखें तो अल्लाह ने इनको कैसे चुना, बीबी मरियम जैसी पाकीजा बच्ची इनको दे दी, जिससे अपनी इज्जत और इफ्फत और शर्म की हिफाजत की, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा बिन बाप के इस खानदान में पैदा करके एक पूरी बुनियाद खड़ी कर दी एक मजहब की। फिर अल्लाह ताला ने आले इमरान को अगर इस तनाजर में चुना तो वो क्या था कि ये शख्स बैतुल मकदस के खिदमतगारों में से थे, यानी टेक केयरर ऑफ दी बैतुल मकदस थे, खास लोगों में से थे, अपने कौम के बड़े थे, लोग इनकी इज्जत करते थे। यहां भी देखिए कि दीन का काम क्या करते होंगे, मस्जिद में जाके तकरीरें करते थे, नहीं सफाई करते थे। आज हम अपनी नेकी दूसरे को दे देते हैं, हम कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है गालिबन, उसका खुलासा कि कौम का सरदार उनका खादिम होता है, असैदुल कौमी खादिमुहुम, जो जितनी खिदमत करेगा ना अपने लोगों की, वो एक वक्त आएगा सरदार बन जाएगा। हम कहते हैं सरदार और खिदमत और सफाई और झाड़ू पोछा और बाथरूम और टॉयलेट, तौबा तौबा, ये हम नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि चुनाव के लिए पहले झुकना पड़ता है। इनका इंतकाल हजरत मरियम की पैदाइश से पहले हो चुका था। अगर हम आले इमरान के अंदर दूसरे इमरान को देख लें तो दूसरे इमरान थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाप। लेकिन अगला वाक्य जो हमें दिख रहा है वो हमें बता रहा है कि यहाँ आले इमरान से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का तज़किरा है। क्या हुआ था, अब इनको जरा हम अगली आयत की रोशनी में देखते हैं। अलल आलमीन चुना, जहानों पे चुना, तो मुराद ये है कि उस वक़्त के जो लोग थे उन सब पे इनका चुनाव हुआ और ये सारे इस पे आ गए। कैसे थे ये लोग, आयत 34, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, ये एक दूसरे की औलाद से हैं, यानी नबूवत का सिलसिला बाज़ दफ़ा ख़ानदानी सिलसिला भी बना। हम पढ़ चुके हैं ना, बाप का बेटा, बेटे का पोता, यानी नस्ल दर नस्ल जो थे वो नबी थे। सबसे ज़्यादा किसके नसब में नबूवत आई आपको पता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, यानी यूसुफ़ के बाप याकूब, याकूब के बाप इसहाक, इसहाक के बाप इब्राहिम, यानी परदादे तक ऊपर तक नस्ल में नबूवत थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब एक दूसरे की औलाद से हैं। ज़रा जहन में अब वफद नजरान को फिर ले आइए, ये सारी बातें उनको सुनाई जा रही हैं। आज के सबक में आपने दो दलाइल नोट करने हैं रहबानियत के रद के, नन इज़्ज़म, इस्लाम के नाम पर शादी नहीं करने वाला बुनियाद जो थी, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद से, ये एक दूसरे की औलाद में से थे। आज भी आप देखेंगे कसरत से है, लेकिन उस दौर में इसके इस्तेआरा शुरू हो चुके थे कि क्रिश्चियनिटी में शादी करना और बीवी बच्चों में पढ़ना इसको दीन के खिलाफ समझते थे। आज भी आप देखिए हैबिट के नाम पे नन से ड्रेस पहनती हैं, सर से पांव तक कवर्ड है, शादी नहीं करती। इनके कुछ लोग हैं जो इसी मनसब पे पहुँचते हैं, मर्द भी होते हैं, वो भी शादी नहीं करते, फिर वो चर्चिस की खिदमत करते और वक्त वहाँ सब रखते हैं, उनका ख्याल है कि ये नेकी है, हालांकि असल में जो वहाँ गंदगी है अल्लाह की पना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे पैदा करते थे नबी, यानी ये एक रद्द है इस बात का कि शादियाँ करो और बच्चे पैदा हों। ये सब एक दूसरे की नस्ल से थे, हजरत नूह आदम की नस्ल से थे, हजरत इब्राहिम नूह की औलाद में से थे, और हजरत इब्राहिम का पूरा ख़ानदान बनी इस्माइल और बनी इसराइल और फिर आले इमरान, यानी ये एक ही फैमिली में थे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। क्या जो आगे आने लगा है, ये जो अल्लाह की सिफात आती है ना अल्लाह सुब्हानहु तआला की आयतों के एंड पे, ये बड़ी अहम होती हैं, इसको ऐसे ही ना जाने दिया करें। अमूमन मैंने देखा है कि जब आयतों की तफसीर होती है ना तो शुरू में हमें मौजू समझ आता है तो आखिरी हिस्से पे फोकस ही नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 1 साल दौरे कुरान हमने अस्माउल हुस्ना की रोशनी में किया तो उस साल सबसे ज्यादा बात हम आयत के एंड पे करते थे, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की सिफात और ये कॉम्बिनेशंस ये बड़े खूबसूरत होते हैं, ऐसे नहीं बनते, इनके पीछे हिकमत है। आगे चूंकि एक औरत की एक दुआ और एक नजर का तस्करा आने लगा है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ समी यानी उसकी बात सुन ली, और अलीम उसकी नीयत को जानता है कि उसने क्या किया। क्या हुआ था? आयत 35, इस कालत इमरातु इमराना, जब कहा इमरान की औरत ने, यह है लफ्जी तर्जमा। इमरान की औरत कहेंगे तो दो तरह से समझिएगा इसको, लफ्ज़ इमरा अरबी जुबान में उर्दू की तरह दो मानों में आता है, एक है बीवी हाँ और एक है औरत, वुमेन और वाइफ के मानों में। पीछे भी बात हुई थी ना इस पे निसा के अंदर कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, तो इमरा उसका वाहिद है, निसा जमा, ठीक है। तो अगर इसको हम लें कि जब इमरान की औरत तो मुराद है कि कबीला इमरान के कबीले की एक औरत कोई भी हो सकती है, और अगर आप इसको देखें पिछली आयत जिसमें आले इमरान का तस्करा हुआ तो यहाँ मुराद है इमरान की बीवी ने, और यही बात करीब बस कियास है कि ये इमरा तो इमरान इमरान की बीवी थी, हन्ना बिनते फाकूस, इनका नाम तौरात में मिलता है हमें, हा से बड़ी हा से हन्ना। क्या कहा? रब्बी इन्नी नजरतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, ए मेरे रब मैं नजर करती हूँ तेरे उसको जो मेरे पेट में है आजाद करते हुए। यानी जब कहा इमरान की बीवी ने, ए मेरे रब जो बच्चा मेरे पेट में है इसको मैं तेरी ही नजर करती हूँ हर जिम्मेदारी से छुड़ा कर। अल्लाह अकबर, ये कौन थी, कहाँ थी, इनके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स मिलती हैं। देखिए कुरान पाक का अंदाज तफसीलात में नहीं जाता, बस पॉइंट्स लेता है। हजरत इमरान बैतुल मकदस के बड़े थे, खिदमतगारों में थे, बड़े बाइज्जत थे, अल्लाह ताला ने अभी तक इनको औलाद की नेमत से महरूम रखा था। फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ बीवी प्रेग्नेंट हुई, अल्लाह का हुक्म देखिए कि अभी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई और शोहर का इंतकाल हो गया। अब यहाँ लिखिए अपने हमारे सोसाइटी के रुझानात को, एक औरत प्रेग्नेंट और शोहर का इंतकाल और कुछ भी नहीं। अमूमन हमारे यहाँ ऐसी औरतों का हाल क्या होता है? होश हवास खो गई, बदबख्त हूँ, बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ ही ये होना था, कितना उनका मोरल डाउन होता है। लेकिन ये औरत हकीकी पाकीज़ा नेक मुत्तकी औरत थी, जोहत वाली थी। कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, यानी इस पे दुनियावी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालूंगी, इसको हैकल की खिदमत के लिए खास कर दूंगी, तौरात की खिदमत करेगा ये बच्चा, मैं इससे कोई मुआशी उम्मीदें नहीं लगाऊंगी। आजाद करने से मुराद क्या है कि इसको अपनी तरफ से आजाद करती हूँ। फतकबल मिन्नी, बस तू इसको मेरी तरफ से कबूल कर ले, इन्नक अंतस समीउल अलीम, बेशक तू खूब जानने और सुनने वाला है। आप देखिए कि ये मन्नत कौन मान सकता है, पहले तो इसको लिख लें कि इस मन्नत को नजरे नजर, वही जो नजर तुम जाल वाला, नजरे तबर्रो कहते हैं, तबर्रो बिर से नेकियों की मन्नत। और पिछले दौर में ये आम बात थी कि लोग अपनी औलादों में से किसी बच्चे को अल्लाह के नाम पे डिवोट कर देते थे। इसकी हमें मिसालें नबी सल्लम की अपनी वालिद की रोशनी में भी मिलती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा था कि मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा, ये उस दौर का रुझान था। अब आप देखिए कि इस औरत ने एक बच्चा या बच्ची, अब इनको नहीं पता क्या आ रहा है, बेटा है कि बेटी है, अल्लाह के नाम पे कर दिया। सच बताएं कि ये मन्नत कौन मान सकता है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो, कि मैं इसको पेट में रखने के बावजूद अपना नहीं समझूंगी, मुहर्ररा। आज जब बच्चों की हम तवक्को करते हैं, देखिए एक तो फितरी बात है, अल्लाह ताला देता है, बच्चे की मोहब्बत है, यानी हम इसको इंसान की फितरत से नहीं छेड़ते। लेकिन अमूमन अमूमन वो लोग खास तौर पे जो दुनिया में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चे की ख्वाहिश क्यों करते हैं? खूब माल है, दौलत है, वो बच्चा क्यों मांगते हैं भला? जायदाद का वारिस, राइट? उनको पता है हम 10 मुलाजम भी रख लेंगे, हमें कोई मसला नहीं बुढ़ापे का, लेकिन वो चाहते हैं कि लाखों की जायदाद का चलो अकलौता ही वारिस आ जाए। ठीक है, पैसे वाले लोग क्या सोच के बेटा मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें बच्चा दे दे तो हमारी चलेगा। दूसरी वजह लिखिए, ये लिखना पड़ेगा आपको, सीने पे हाथ ना बांधे, क्लास में हाथ बांधने वाला वक्त नहीं होता, लिखा करें, ना लिख सके फिर भी लिखने वाली शक्ल बनाए। दूसरी वजह क्या होती है? नसब, नाम नहीं कटेगा। अल्लाह के नबी सल्लम के जब दूसरे बेटे का भी इंतकाल हुआ तो दुश्मनों ने हंसी उड़ाई, कहे मोहम्मद अब तू तो नस्ल बरीदा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी मगमूम हुए कि मुझे ये ताना मिला, तो अल्लाह कहते इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। तेरा तो दुश्मन खुद नस्ल कटा है, तेरा नाम तो मैदाने महशर तक चलेगा कि हम वहां तुझे हौज़े कौसर देंगे। लोगों की औलादें तो उनके नाम डुबो देती हैं। तो लिहाजा दुनिया में औलाद मांगने की दूसरी वजह क्या होती है? अमूमन कि नस्ब चलेगा। तीसरी वजह अमूमन जो बच्चे की ख्वाहिश की जाती है वो क्या होती है? बुढ़ापे का सहारा, हमें पानी पिलाएगा। सुना भाई ये जुमला, हाय हमें कौन पानी पिलाएगा? 10 लोग पिला देंगे आप किसी ओल्ड होम में चले जाएं, लेकिन बात तो नहीं बनती। मुझे उस दिन उस सिस्टर के साथ की भी बात याद आ गई, जब मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं? तो कहती यस। तो मैंने कहा दे स्टेज विद यू, तुम्हारे साथ रहते? कहती नो 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 दे कम बट मेरे साथ नहीं रहते। तो मैं कहा तुम्हारे साथ कौन रहता? कहती मेरा हस्बैंड, और उसको मेरी बड़ी ज़रूरत है। ज़रा वो भी बूढ़ी थी तो मियाँ भी बूढ़ा होगा। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि इस्लाम में पता तुम्हें क्या होता है, इफ़ यू विजिट एनी मुस्लिम कंट्री देर इज़ नो ओल्ड होम देयर। क्यों? क्योंकि हर होम ही ओल्ड होम है। मैंने कहा कि जब हमारे बुजुर्ग बूढ़े होते हैं ना तो वो और कीमती हो जाते हैं, लोग उनको इस तरह से केयर करते हैं जैसे कोई अपने डायमंड्स की करते हैं। कहती यस यस आई नो एंड दिस इज राइट वे। फिर मैं उसको उस तरह बात कर रही थी कि देखो इस उम्र में चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं होती, वो तो मिल जाती, इसमें तो दिल चाहता है कोई पास बैठे, हम बातें करें, उनके बच्चों से खेलें। कहती यस यस। और आप देखिए इस्लाम का कितना पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ आप देखिए कि तीसरी वजह अमूमन बुढ़ापे का सहारा हम लेते हैं। एक चौथी वजह जो अमूमन कम पैसे वाले लोगों की होती है वजह, यानी जिनके पास कुछ नहीं, वो कहते हैं अल्लाह एक बेटा दे दे दो हाथ हो जाए हमारे, चार बेटियां हैं, अकेला बाप है, क्या कमाए। जब कोई ये जुमला लिखता है ना, बड़ी नासमझी में लिखते हैं लोग, सच्ची बात है, मुझे सोचें तो कभी ना लिखें कि हमारे घर में अकेले मियाँ कमाने वाले हैं। अक्सर कभी कहीं ना कहीं ये जुमला सुनना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ व्हाट डज इट मीन? दुआ कीजिए अल्लाह उनको सलामत रखे। और रिजालु कवामून अलल निसा, आज ये परसेप्शन दे दिया कि जिस घर में सिर्फ शौहर कमा रहा है बस वो मजलूम तरीन शौहर है दुनिया का। नहीं, गलत है। अल्लाह ने मर्द के अंदर इतनी हिम्मत और बरकत दी है मर्द के पैसे में, एक मर्द माशाल्लाह 5-6 बच्चों और बीवी का खर्चा चला लेगा। और बाकी दूसरी कहानियों पे ना जाएं इस वक्त, तो बेहतर है। जितने लोग कमाते हैं फिर उतने उनके खर्चे और उतने नखरे भी हो जाते हैं। वो आज अगर आपके बच्चे आपकी गालियों के आगे नहीं बोलते ना, तो इस याद रखिए कि वो आपको देते कुछ नहीं। जिस दिन उनकी पहली पे आ गई, आपके पर्स में भी आ गई, तो उस दिन आप भी डांटते हुए सोचेंगी कि ये मुझे खैर से पैसे देता है। तो बहरहाल बीबी मरियम ने इनमें से कोई उजर नहीं रखा, कहा कि मैं इसको तेरे नाम पे करती हूँ। यहाँ से खास तौर पे इस चीज़ पे भी इशारा मिलता है कि औरतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमारे असलाफ की माएँ बिल्कुल ऐसी थी, बचपन में गोदों के बच्चों को अल्लाह के नाम पे कर देती थी। वक्फ करना इसको कहते थे, मैं इसको करूँगी। इमाम बुखारी का नाम सबने सुना है, मेरा नहीं ख्याल किसी को नहीं पता वो कौन थे। आपको पता कि उनकी पैदाइश से पहले क्या हुआ था? नहीं पता। उनकी माँ ने भी ऐसी ही मन्नत मानी थी कि अल्लाह जो बच्चा तू मुझे देगा ना, मैं उसको हदीस नबवी के लिए खास कर दूंगी, तेरे नबी की हदीसें लिखेगा। और आपको पता है कि उस वक्त पता नहीं उनके शौहर थे कि नहीं, बहरहाल शौहर उनके भी बहुत जल्दी फौत हो गए। जब इमाम बुखारी पैदा हुए ना, तो आपको पता क्या हुआ? उनकी आंखें नहीं थी, नबीना थे, जिसको आज के दौर में आप कहें कि बोन ब्लाइंड, नबीना पैदा हुए। बिल्कुल वही सिचुएशन आप यहाँ कायम करके देख लीजिए कि माँ ने बच्चे की नियत की और हुआ क्या, बच्चा नबीना हो गया। आज की औरत होती कहती देखा, एक तो नेकी की नियत जब से की है तब से मसले ही नहीं खत्म हो रहे घर के। कोर्स क्या शुरू कर लिया, निरी लड़ाई शुरू कर ली है, हुकूक वाले बात तो सारे तज हो गए। नहीं, बड़े सब्र और सुकून से वो माँ बैठी है, कहते हैं कि कुछ महीने दिन जितने भी गुजरे, तो एक दिन फिर तहज्जुद के वक्त अल्लाह के आगे रोती हैं जायनमाज़ पे कि अल्लाह मैंने तुझसे एक चीज़ मांगी थी, तेरा बहुत शुक्रिया तूने मुझे दे दी, तूने मुझे बेटा दे दिया, लेकिन है अल्लाह उसकी एक चीज़ तेरे पास रह गई है, तू बता के वो किन नज़रों से नबी की हदीस को लिखेगा, वो कैसे इल्म लेगा, वो कैसे पढ़ेगा। तो अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई दे दे। और आपको पता है कि कितनी तड़प थी माँ की दुआ में, कि जब देखा उसके बाद तो इमाम बुखारी की बिनाई आ चुकी थी, अल्लाह ने उनको निगाह दे दी। और कैसी निगाह दी, चांद की रोशनी में ये फतहुल बारी लिखी है उन्होंने, इतना हाफ़ज़ा था उनका। कभी पढ़ें, जिंदगी रही तो आप हदीस जब पढ़ेंगे तो आप खुद सुनेंगे हालात जिंदगी उनके। सैकड़ों हदीसों को खलत मलत करके लोग उनके सामने पेश करते थे, ऐसे ही एक की हदीस, एक का मतन, एक की रिवायत करते कराते, और इमाम बुखारी पूरे मजमे में उठ के खड़े कह देते कि आपने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। तो याद रखिए कि ऐसी माएँ अगर आज भी होती, और हैं माशाल्लाह बहुत सारी, और नहीं है तो बन जाएं हम आज से ऐसी माँ कि जो अपने बच्चों से मुआशी उम्मीदें ना लगाएं कि हमें कमा के खाएंगे, बल्कि ये दुआएं मांगिए कि बच्चे हमारी आखरत को संवारने वाले हो जाएं। अब उस वक्त का रिवाज क्या था कि हैकल में सिर्फ मर्दों को आने की इजाजत थी, मर्द दीन की खिदमत भी करते थे, और जैसे आज के दौर में मस्जिदों में अमूमन मर्दों का ही हिस्सा होता है, तब भी यही था। अब हुआ क्या इस माँ के साथ, आयत 36, फलम्मा वदअतहा, फिर जब उसे वज़ाए हमल हुआ यानी डिलीवरी हो गई, बच्चा डिलीवर हो गया, कालत कहने लगी, रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा, ऐ मेरे रब मैंने तो एक बच्ची को जन्म दिया। देखिए वदअतहा और वदातुहा दोनों वदा उर्दू में हम बोलते हैं ना, वज़ाए हमल वही लफ्ज़ है, हमल का अपोजिट है वज़ा, उठाना, और इसका अपोजिट क्या, छोड़ देना। यानी बच्चा पैदा हो गया तो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं कि लाशौरी में, और अचानक बोल उठी कि अल्लाह आपको पता है मेरे घर बेटी हुई है, तो क्या अल्लाह को नहीं पता? हाँ, लेकिन मुराद क्या है कि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्यों सोचा कि बेटी हो गई, हाय अल्लाह मैंने वदा तो हा उनसा, हाय बेटी है इसका जहेज बनाना पड़ेगा, हाय इसको भेजना पड़ेगा, ये वजह थी? नहीं, ये वजह नहीं थी, वजह ये थी कि मेरी मन्नत का क्या होगा। हम होते कहते चलो शुक्र है बेटी हो गई, हमने तो नियत की थी, अब नहीं काम हुआ तो ना से, बेटा होता तो करते, क्योंकि हैकल वाले बेटियों को नहीं कबूल करते थे, और बेटी के साथ जिम्मेदारियां बहुत है। तो अल्लाह को पूछ रही कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया, वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, और अल्लाह बेहतर जानता था कि इसने क्या जाना है। अब इसमें दोनों बातें हैं ना, एक तो ये कि अल्लाह को क्यों बताती हो, अल्लाह का तो पहले ही पता है, और दूसरा इसमें क्या है कि अल्लाह को खूब पता है कि बेटा होना चाहिए था का बेटी, यदि अल्लाह को हिकमत पता है। कई दफा हम बेटे मांगते हैं, बेटियां हो जाती हैं, फिर अल्लाह को पता है इस बेटी से क्या खैर मिलनी है। देखिए उस वक्त कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था कि वो पहले करा लेती, आज ये पंगा भी जो हम अपने हाथ में ले लेते हैं ना कि पहले से पूछ लें, और रुसवाई नहीं रही, नर्सों के और डॉक्टरों के तरले मिन्नत करो, अच्छा बता दो बेटा के बेटी क्यों, वो मैंने शॉपिंग करनी है। भी क्यों, शॉपिंग में क्या मसला है आपको, वो भी ब्लू लूँ कि पिंक लूँ, किस हदीस का मसला है जी, पिंक जो है वो लड़का नहीं पहन सकता, और किस आयत में लिखा है कि स्काई कलर लड़की नहीं पहन सकती, परसेप्शन। कभी ये फर्क क्या, छोड़िए प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं, मैं एक दिन किसी को बता रही थी, बात तो बड़ी पर्सनल है, एक बहुत पुरानी तस्वीर थी हमारे पास, बहुत पुरानी, नानी बेटी, उस बेटी के बच्चे गोद में, और एक छोटा मामू भी, माओ के भी बच्चे होते थे, माओ के भी, सब ने एक ही कपड़े पहने हुए, एक थान आता था घर में, सब सी देते थे, वल्ला ही वो तस्वीर कहीं पड़ी होगी प्रिंटेड, ऐसे कोई डिजाइनिंग है वाइट के ऊपर के, नानी से लेके पोते नवासे बच्चे सब ने एक ही कपड़े पहने हैं। तो क्या हो गया, ये जो आपने किड्स फॉर अस और टॉयज और फुलां और मदर केयर, ये है वो मुसीबतें जो आज हमारा गुजारा नहीं होने देती। कितना पेंडुए लड़के को पिंक फ्रॉक पहना दिया और कितनी इनको समझ ही नहीं, स्काई पहना दिया। आप ना पिंक पहनाए ना स्काई पहनाए, आप लेमन पहना दें, व्हाइट पहना दें, इन चीजों ने हमारा दिल दिमाग ले लिया। आप कहते क्या फर्क पड़ता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन याद रखिए कि इसमें इसराफ भी है, और साथ ही साथ इसमें आप देखिए कि किस तरीके से आपकी सोच किधर जाती है। ये सारे बाजार बंद हो जाए अगर हम इन चीजों से अपने आप को आजाद कर लें। पहले बच्चे के जो कपड़े बनते थे ना, वो मेरा हाल है 3-4 बच्चे तो पहनते थे, और उस वक्त होता भी ये था हर साल बच्चा, खैर से 2 साल 1.5 साल में। अब एक बच्चे दूसरे के बीच में इतना गैप ले लेते हैं कि वो कपड़ों का स्टाइल ही बदल जाए। कई लोग ऐसे उनके पास अभी भी अपने बच्चों के कपड़े पड़े होंगे, वो देते ही नहीं किसी को पुरानी चीजें, कहते हैं नहीं रखी हुई है निशानियां। तो बहरहाल आप देखिए कि कैसे सोच बदलती है। उनको सिर्फ एक गम था कि मेरी नजर का क्या होगा, मैं इस बच्ची को लगाऊंगी कहाँ। अल्लाह ताला कहते हैं अगला जुमला जो ना, इसको दो एंगल से समझिएगा, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और नहीं होगा कोई बेटा इस बेटी जैसा। एक तो इसका ये तर्जमा है, और दूसरा तर्जमा लिखिए, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और बेटा तो बेटी जैसा नहीं होता। ये मतलब है इस जुमले पे। बाज लोग बड़े नाराज हैं, देखो देखो ये क्या जुमला है। अब ये किसने कहा, एक सूरत ये है कि ये मरियम की वालदा का कॉल है, तो फिर उनका मतलब क्या था कि लड़का लड़की की माने तो नहीं होता, यानी अगर लड़का होता तो उसको खिदमत पे लगा देती, वक्फ कर देती, अब तो बेटी हो गई है। और अगर इस कॉल को बास कहते हैं कि ये जुमला मोतरिजा है, और जुमला मोतरिजा क्या होता है कि एक बात चल रही होती है आगे भी वही बात है, बीच में एक जुमला है। मिसाल देती हूँ, वैसे हम औरतें ऐसे जुमले बहुत बोलती हैं, बस हम कहते हैं अच्छा मैं लाहौर गई, फिर वहां गए, फिर हम शालामार बाग गए, और फिर वहां से आगे गए। क्या तुमने शालामार बाग देखा? अब ये जो है ना, ये क्या तुमने शालामार बाग देखा है, ये जुमला है मोतरिजा, जिसका कलाम के आगे पीछे से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो ये बात सब ऐसा होता है कि कोई बात चलती है तो बीच में कमेंट के तौर पे आता है। तो बस कहते हैं कि ये अल्लाह सुबहाना ताला का कॉल है कि लैसा ज़करुकल उन्सा। अच्छा, कुछ लोग अपेरेंटली इस पे कहते हैं देखो देखो